और दुख है का मूल कारण है कि शरीर को हम मैं माने हैं, नहीं तो दुख नहीं है। यदि शरीर से आत्मभावना निकल जाए तो इन सारे दुखों का संबंध शरीर से है, शरीर को हम मैं मान बैठे हैं, इसलिए हमें दुख भोगना पड़ रहा है, इसको अनर्थ कहते हैं। तो अनर्थों का संबंध साक्षात भक्ति योगम अधोक्षम। भगवान वेदव्यास देव ने विचार किया कि जीवों का अनर्थ कैसे दूर होगा, तो उन्होंने यह भी देखा समाधि में कि अधोक्षजे भक्ति योगम साक्षात अनर्थ उपशमम,
अथवा भक्ति योग के लिए भी साक्षात शब्द लगेगा। अधोक्ष जो इंद्रियों से अतीत हैं, विष्णु हैं, भगवान हैं, उनमें भक्ति योग साक्षात अनर्थ का उपशमन कर देता है। साक्षात का अर्थ है कि और बिना किसी की सहायता के, भक्ति योग कंप्लीट है, समर्थ है, ऐसा नहीं कि उसके साथ और ज्ञान तप योग आदि जोड़ना पड़ेगा, तो साक्षात कहते हैं। केवल भक्ति योग से जीवों का सारा दुख दूर हो जाएगा, केवल भक्ति योग से, इसको कहते हैं साक्षात अनर्थ उपशम, अथवा साक्षात भक्ति योगम का अर्थ है कि केवल भगवान की भक्ति से। उधर साक्षात का अर्थ अनर्थ उपशमन में कि पूरा अनर्थ का नाश हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता भगवान की भक्ति करने से। लेकिन भक्ति जीवों में, उन्होंने देखा कि जीवों में भक्ति है नहीं, तो भक्ति योग के विषय में जो अनभिज्ञ है, लोकस्य अजानता, जो भक्ति योग नहीं जानते हैं, उनमें भक्ति उत्पन्न करने के लिए भगवान वेदव्यास देव ने सात्वत शास्त्र का प्रवचन किया, इसका प्रकाशन किया। आप समझ गए कि भागवत का सार क्या है, अभोक्षज में भक्ति उत्पन्न करने के लिए श्रीमद् भागवतम का प्रकाशन किया गया। तो आज कोई भागवत का प्रवचन करे या टीका लिखे और भक्ति ही उसका उद्देश्य न हो, भक्ति सरार्थ न हो, तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति भागवत जानता नहीं। भागवत का प्रकाशन किया गया अभोक्षज में भक्ति उत्पन्न करने के लिए। तो अभोक्षज अर्थ है भगवान श्रीहरि के लिए, कृष्ण के लिए रिजर्व अर्थ है, मतलब अन्य देवताओं का बायकॉट करता है इसमें, अधोक्षज दूसरे लोग नहीं है, भगवान विष्णु के अलावा कोई अधोक्षज नहीं। अधः अक्षजम जस्मात् स अधोक्षजः, अक्षज का अर्थ है इंद्रियों का, अक्षों का अनुभव, हमारे आंख का अनुभव, कान का अनुभव, मन का अनुभव, हमेशा जिससे नीचे रह जाए, मतलब जो मन के अनुभव से, वाणी के अनुभव से, नेत्र के अनुभव से जो सदा परे है, उसको अधोक्षज कहते हैं। ये देवता आदि जो है हमारे इंद्रियों के विषय है, देवताओं को देखा जा सकता है, वह अधोक्षज नहीं है, उनका शरीर प्राकृत है, भले सत्वगुण प्रधान है लेकिन प्राकृत है, उनका लोक भी प्राकृत है। अभी तो केवल 5000 वर्ष पहले सभी देवता आते रहते थे इस पृथ्वी पर, हम लोगों से उनका शरीर सुपीरियर है लेकिन त्रिगुणात्मक है, वो भी अधोक्षज नहीं है। इन भगवान विष्णु का पीताम्बर, उनका जूता, उनका रथ, उनका देह, जो कुछ भी है सब चिन्ह है, इंद्रियातीत, जड़ नहीं है। इसलिए हमारे इंद्रियों का अनुभव जड़ है और जड़ अनुभव से युक्त इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनको अधोक्षज कहते हैं। अधोक्षज का अर्थ है कि जिनका सब कुछ अप्राकृत है, जिनकी लीला अप्राकृत है, जिनका धाम अप्राकृत है, जिनका नाम अप्राकृत है, जिनके परिकर अप्राकृत है, सब कुछ जिनका माया से परे है, दिव्य है, स्पिरिचुअल है, उनको अधोक्षज कहते हैं। और हम जितने भी जीव इस जगत में जन्म लिए हैं सबका अनुभव केवल माइक वस्तुओं तक जा सकता है। माया से परे स्पिरिचुअल पदार्थों को हमारी इंद्रियां नहीं पकड़ पाती, इसलिए और शब्द न दे करके यहां अधोक्षज शब्द दिया गया है। अधोक्षज में भक्ति उत्पन्न जब होती है तब अनर्थ का नाश होता है, मतलब भगवान ने, ऐसा नहीं कि भागवत पढ़ करके और किसी भी देवता के भक्त हो गए और कहते हम तो भागवत पढ़ते रहते हैं। क्या भागवत पढ़ते रहते हो, शब्द का अर्थ ही नहीं समझ में आया क्या भागवत कह रहा है। अधोक्षर में भक्ति उत्पन्न करने के लिए भागवत का निर्माण किया गया, लोक के लिए अजानतः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और वेदव्यास देव के लिए विद्वान, दोनों जस्ट विपरीत शब्द, एक जानकार है और एक अजानतः, एक ही श्लोक में। विश्व के समस्त प्राणी इसको नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान वेदव्यास देव जानते हैं। क्या जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में भक्ति योग ही समस्त दुखों को नष्ट कर सकता है, इसको जानने वाला विद्वान। विद्वान का अर्थ होता है जानकार, जो जानता है उसको विद्वान कहते हैं। लोक के लिए अजानतः शब्द दे रहे हैं। दुनिया में जितने लोग हैं वास्तव में सब बुद्धिहीन है, जानते नहीं, भगवान वेदव्यास देव जानते हैं। तो जानने वाले विद्वान के द्वारा नहीं जानने वालों को जनाने के लिए भागवत का निर्माण किया गया, विद्वान ने किया चक्र, क्या सातवत संहिता, किसके लिए, अजानता लोकस्य अर्थ, नहीं जानने वाले लोगों के लिए किया, इसकी आवश्यकता है। आजकल हम लोग विद्यालय बनाते हैं और सब चीज बनाते हैं तो जानते हैं कि विद्यालय इसलिए बनाया गया है कुछ लोग पढ़े नहीं हैं उनको पढ़ाने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि विद्यालय बनाना एक फैशन है बस बना दो, कुछ अज्ञ जीव हैं जिनको पढ़ाना लिखाना है उनको पढ़ाने के लिए विद्यालय बनाया जाता है, लेकिन पढ़ाने वाले जो हैं उनको अवश्य पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज दो बच्चों को लाकर स्कूल में डाल दिया और एक को पढ़ाने वाला बना दिया कि तुम पढ़ाओ, क्या पढ़ाएगा। अज्ञ व्यक्ति भागवत को नहीं कह सकता है, उसे जानकार होना चाहिए तब वह अज्ञ लोगों के अज्ञान को नष्ट करेगा। लेकिन आजकल जो भागवत हो रहा है प्रायः बच्चा क्लास में आज भर्ती हुए हैं उसी में से एक बच्चा बोलना चालू करे, जैसे विद्यालय में ये हालत, वो खुद नहीं जानता है और वो बोलेगा तो और क्या जानेंगे। इसलिए पढ़ने वाले लड़कों की अपेक्षा पढ़ाने वाले की ज्यादा छानबीन की जाती है, उसको ट्रेनिंग लेना पड़ता है ना, पढ़ना पड़ता है, जल्दी बहाली नहीं मिलती है। लेकिन पढ़ने के लिए तो बच्चा क्लास में किसी का भी एडमिशन हो जाएगा, दाखिल कर दो कोई बात नहीं। एक श्लोक में विद्वान शब्द है और उसके साथ ही साथ अजानत परम विद्वान भगवत लीला के मर्मज्ञ भक्ति योग में अभिज्ञ वेदव्यास देव ने भक्ति योगान अभिज्ञ जीवों के लिए भागवत का निर्माण किया। भक्ति का प्रभाव नहीं जानते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो सातवत संहिता का निर्माण उन्होंने क्यों किया, जीवों का उपशमन, अनर्थ उपशमन के लिए। अनर्थ उपशम कैसे होगा, भक्ति से। भक्ति कैसे उत्पन्न होगी, भागवत से। तो क्या प्रकार होगा भक्ति उत्पन्न करने के लिए, या भागवत को पेरेंगे कहीं मशीन में तब भक्ति उत्पन्न होगी कि छुएंगे कि परिक्रमा करेंगे। कहीं कहीं मैं देखा हूँ भागवत सप्ताह में लोग सुनने नहीं आते हैं, भागवत खत्म होते ही परिक्रमा लगाना चालू करते हैं। कई स्त्रियां ऐसे आती हैं भागवत सप्ताह में नहीं बैठती हैं, लेकिन भागवत की परिक्रमा खूब 108 बार 10 बार करके उसे क्या भक्ति उत्पन्न होगी। तो भागवत से भक्ति उत्पन्न होगी, पर क्या करने से? जस्या वही श्रूय माना है, सुनने से, सुनने से भगवान में भक्ति उत्पन्न होगी। जस्या वही श्रूय माना यहां भक्ति उत्पन्न देते, भागवत जब ही सुनना प्रारंभ करते हैं उसी समय भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी समय भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जो भक्ति अभी प्रारंभिक भक्ति भी शोक मोह भय को नष्ट करने में पूर्ण समर्थ होती है, प्रेम स्वरूप भक्ति तो क्या कर देगी, वो तो कहना ही नहीं, वो तो भगवान को वश में करेगी, भगवान को ला देगी। लेकिन सामान्य भक्ति अभी उत्पन्न होगी वो भी शोक मोह भय को नष्ट कर देती है, तो सुनने से भक्ति उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है कि भगवान वेदव्यास देव या भागवत रच करके आकांक्षा किए कि सभी इसका श्रवण करें। हम लोगों को खुशी होनी चाहिए कि हम लोग भगवान वेदव्यास देव की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, है ना। उन्होंने जो चाहा, यदि उनकी इच्छा पूरी करके हम लोग उनका स्वार्थ साधन नहीं कर रहे हैं, अपना हित करने के लिए हमें सुनना है। लेकिन भगवान चाहते थे कि सब अपना हित करे इसे पढ़ करके सुन करके। तो जिस भागवत के सुनने पर भक्ति उत्पद्यते, कस्मिन किसमें, एक बार वो कह चुके अधोक्षज, अब कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान वेदव्यास और शुद्ध गोस्वामी बहुत सावधान है, पुनः कहते हैं कृष्ण परम पुरुष। समझना चाहिए इस बात को, भक्ति का अर्थ ही है भगवान विष्णु में भक्ति, और कहीं की भक्ति को भक्ति नहीं कहते हैं। अब भक्ति शब्द का प्रयोग और जगह नहीं किया जा सकता, देव भक्ति या देश भक्ति या यह भक्ति वह भक्ति, कई लोग इस भक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उसके पहले कोई शब्द जोड़ देते हैं, यह भक्ति वह भक्ति यह भक्ति वह भक्ति। भक्ति का अर्थ ही है कृष्ण भक्ति। शुद्ध गोस्वामी बहुत सावधान है, इसीलिए वे अधोक्षजे कृष्ण परम पुरुष है, और कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं परम पुरुष है, परम ईश्वर, परम परमेश्वर, श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अथवा परम पुरुष है और अधोक्षज है और उधर पूर्णम पुरुषम, तो इससे कुछ क्लियर बहुत नहीं हुआ। कोई भी कह सकता है कि ये परम पुरुष है या वो पूर्ण पुरुष है या वो अधोक्षज है, इसीलिए उन्होंने सारा अर्थ रिजर्व कर दिया कृष्ण। कृष्ण नान्यस्मिन न अन्यस्मिन भक्ति उत्पद्यत। और इसे यह भी सिद्ध हो गया कि भागवत सुनने से कृष्ण में ही भक्ति उत्पन्न होगी, और जगह नहीं। कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते, उत्पन्न हो जाती है भक्ति उत्पद्यते। जिस दिन सुनते हैं प्रथम दिन, एक मिनट भी दो मिनट भी, उसी समय भक्ति उत्पन्न होने लगती है। भक्ति के कई स्तर हैं उत्पन्न होने के, श्रील रूप गोस्वामी पाद ने बहुत विस्तार से बताया है, श्रील प्रभुपाद भक्ति रसायन सिंधु में नेक्टर ऑफ डिवोशन में बहुत सुंदर तरीके से उसकी व्याख्या की है, किस तरह से भक्ति उत्पन्न होती है और डेवलप करती है। जैसे किसी स्त्री को बच्चा होता है तो गर्भाधान होना वो भी बच्चा उत्पन्न होना है, जिस दिन बच्चा उदर में हुआ उसी दिन माना जाएगा कि उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ तो उसको फिर पोसा जाता है, पाला जाता है। भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि बच्चा पेट में पलता जाता है और फिर वो प्रकट होता है। यह उदाहरण तो शास्त्रों में नहीं दिया गया है, इसलिए मैं भी संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन किसी लता का बीज बो करके उसे उत्पन्न करना, सींचना, पटाना, इस चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण दिया है और भागवत में दिया, भक्ति बल्ली स्नेह बल्ली, बल्ली माने लता। जैसे कोई व्यक्ति भूमि का शोधन करके भूमि से अनवांटेड घास आदि निकाल करके उसमें पानी डाले, उसको आर्द्र करे और उसमें बीज डाले तो बीज प्रस्फुटित होगा, अंकुर होगा, इसके बाद फिर लता का रूप लेगा, फिर लता फलेगी, उसका फल खाया जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की उपमा लता से दी। तो जिस दिन लता परिपक्व होगी और कृष्ण के चरण कमल में चढ़ेगी, मतलब कृष्ण विषय होंगे, तो उस समय जीव को कितना सुख मिलेगा इसको तो किसी शब्द में कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्रथम बार जब भक्ति उत्पन्न होती है उसी समय जीव के शोक मोह को नष्ट कर देती है। भाई जीव इस प्रकार से तीन स्थितियों में यहां पड़ा हुआ है, शोक, मोह और भय। इन शब्दों को हम लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। शोक का अर्थ होता है चिंता, जो भूतकाल में हो चुका है, कोई दुख हमारे मन पर असर है और उसका बारंबार जब हम चिंतन करके जलते हैं तो उसको शोक कहा गया। संस्कृत में सुच शब्द का अग्नि भी होता है, जिस चिंता से हम जलते हैं तो इसीलिए इसको शोक कहते हैं। इसमें जलन शब्द प्रधान है, जलते रहते, कुछ न कुछ सोचकर जलते रहते और भविष्य में कोई दुख की आशंका करके मन हमेशा विकल रहता है, घबराता है, तो उसको भय कहते हैं। ये न हो जाए, वो न हो जाए, ऐसा न हो जाए, जीव हमेशा भय में है। भय का कारण क्या है? भय का कारण है कि नश्वान शरीर को मैं माना है। शरीर तो जाएगा ही, ये बूढ़ा होगा, कटेगा, छटेगा, सांसारिक स्थितियां बदलेंगी, कभी धन भी चला जाएगा, कभी धन आएगा। और सबसे बड़ा भय क्या है? मर जाना, शरीर छोड़कर चले जाना। ये भय लगा हुआ बहुत बड़ा भय। घर में ताला लगाना, चोर से भय करना, तो ये तो कुछ भी भय नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा भय नहीं है। भय है कि इस शरीर से जाना पड़ेगा। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से शरीर से जाना भी भय नहीं है। भय ये है कि फिर शरीर में आना पड़ेगा, दूसरे शरीर में, और फिर जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा ये सब भोगना, निरंतर ये जो दुख है ये बहुत बड़ा भय है। लेकिन इस महाभय से कोई भयभीत नहीं है, केवल संसार के थोड़े थोड़े भय से भयभीत। तो भय बना हुआ है हर एक स्थिति में और शोक बना हुआ है, और शोक और भय के बीच में यह मैं हूं और यह मेरा है, ये मोह बना हुआ है, अज्ञान। जीव जलता है, भयभीत होता है, लेकिन इसका कारण है मोह। मोह का अर्थ होता है शरीर में मैं बुद्धि, शरीर में आत्म बुद्धि हो गई है, इसको मोह कहते हैं। और इस मोह का दूसरा रूप है यह मेरा है, यह मैं हूं, ये तो फाउंडेशन है, मूल है। और इसके साथ ही साथ इस देह से कनेक्टेड जो कुछ भी है वो मेरा है। सत्य अनुभव की बात हम कहते हैं, मान लीजिए किसी आदमी को ट्रेन में कोई जगह न मिले, आरक्षण में और उसे टीटी अलाउ कर दे, ठीक है आप खड़े रहिए, तो खड़ा रहने वाला आदमी खुश रहेगा, तो किसी तरह से जगह मिल गई। लेकिन जिसका आरक्षण हो चुका है, उसकी सीट है और उसको खड़ा रहना पड़े, वो तो आदमी नख से सिख तक एकदम जलता रहेगा। इसको मम कहते हैं। इसको थोड़े काल के लिए भावना हो गई, वेयर इज माई बर्थ, दिस इज माई बर्थ, मेरा बर्थ, मेरा बर्थ, और मैं खड़ा होकर के चलूं, वो आदमी मर जाएगा ऐसे, उसका सीट हो तो खड़ा चलने में। यह है मोह, वास्तव में भावना हो गई है कि सीट मेरी है। इसी तरह से बच्चा में और स्त्री में और घर में ये मोह है, ये मेरा है। क्यों? क्योंकि हमारे देह का है, हमारा है, तो हमारा तुम्हारा है कि तुम्हारे देह का है। देह से उसका कनेक्शन है, आत्मा से वास्तव में कोई कनेक्शन नहीं। ये सोचते रहते हैं कैसे इसका खर्चा चलेगा, कैसे ये जिएगा, कैसे क्या होगा, ये होगा। बूढ़े माता पिता तो और यही सोचते रहते। प्रत्येक आदमी अपना कर्म फल लेकर के आया है और हम उसके कर्म कोष में एक रत्ती भी डाल नहीं सकते हैं ना निकाल सकते हैं। यह निश्चित विश्वास रखिए। आदमी सोचता है कि मैं पिता हूं, मैं इसके लिए करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं, नहीं करूंगा तो नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं, हम पिता हैं तो पिता के कारण कुछ कर्तव्य होता है कि हम बच्चे के लिए करें, लेकिन वो बच्चा अपने कर्म के साथ जन्म लिया है। कितने तो ऐसे बच्चे हैं कि जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मां मर जाती है, फिर भी ऐसे ऐसे बच्चे संसार का राजा बने हुए हैं। ऐसा उदाहरण जैसे परीक्षित महाराज, उनके पिताजी नहीं, अभिमन्यु युद्ध में मारे गए जन्म से पहले, और अभी गर्भ में थे तभी ब्रह्मास्त्र चलने लगा। ये कथा आएगी सप्ताह, लेकिन फिर भी वो बच्चा बच गया क्योंकि ईश्वर उसको बचाना चाहते, और वह सम्राट बना, महाराज युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी बना। और बड़े बड़े सम्राट लोग महाभारत में मार दिए गए। ये होता है, लेकिन संसार में सबके मन में ये मोह बना हुआ है, मैं देह हूं और देह के अनुगत पदार्थ या लोग मेरे। मोह बना सब जगह, जबकि यह बहुत बड़ा दुख है। तो शोक, मोह और भय, ये तीनों भक्ति से चले जाते हैं। पुरुष के जीव के, जीव का शोक, मोह, भय चला जाता है भगवान में भक्ति उत्पन्न होने पर, और भक्ति उत्पन्न होती है भागवत सुनने पर। जस्याम वही सूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयाता। इतना सुंदर श्लोक है। तो अब तो किसी को संदेह नहीं होगा कि भागवत पढ़ने का और सुनने का क्या फल है। फल है कृष्ण परम पुरुष से भक्ति, ये फल है। और भक्ति आएगी तो अपने आप दुख तो अब चला जाएगा, उसको भेजने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। भक्ति उत्पन्न होगी और शोक, मोह, भय सब चला जाएगा। प्रभाव होता है। नौ जोगेश्वरों में से कवि नामक जोगेश्वर वर्णन करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन करते समय ग्रास ग्रास पर तीन फल उसे प्राप्त होते जाते हैं अपने आप, तुष्टि पुष्टि क्षुत पाय। तुष्टि का अर्थ है सुख, एक एक ग्रास पर सुख मिलता है, आदमी कहता है ओह वेरी नाइस, बहुत स्वादिष्ट, तुष्टि प्राप्त हो। और पुष्टि, शरीर में कुछ शक्ति बनती है, मुरझाया हुआ शरीर खिलने लगता है एक एक ग्रास पर, और छुत पाय और भूख की ज्वाला का नाश भी ग्रास ग्रास पर होने लगता है। ये तीनों एक साथ होते हैं, तो वह व्यक्ति केवल एक क्रिया कर रहा है, खा रहा है, लेकिन तीन रिजल्ट अपने आप प्राप्त होते हैं। सुख मिलता है और शरीर में बल बढ़ता है और भूख का नाश होता है। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति केवल भक्ति करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, केवल भक्ति, उसको तीन रिजल्ट अपने आप प्राप्त होते रहते हैं। क्या? भक्ति। भक्ति का अर्थ है प्रेम लक्षण, भगवान में प्रेम बढ़ने लगता है। भक्ति करने से भगवान में अनुराग बढ़ने लगता है, भक्ति और विरक्ति, और भगवान से इतर पदार्थों से मन हटने लगता है अपने आप। और भक्ति विरक्त भगवत प्रबोध, और भगवान कितना मधुर है, कितना मेरे है, कितना ऐश्वर्यशाली है, क्या है, भगवान का अनुभव ज्ञान बढ़ने लगता है। उनका ज्ञान मिलना और उनके प्रति प्रेम बढ़ना, और इन दोनों से विमुख जीवों और पदार्थों से मन हटने लगना, ये अपने आप होता है भक्ति करने से। भगवान का अनुभव मिलने लगता है और भगवान में प्रेम बढ़ने लगता है, और सांसारिक पदार्थों से, स्थितियों से मन हटने लगता है, उसका आग्रह नहीं रह जाता मन में, केवल भक्ति करने से होता है। ऐसा नहीं कि एक एक के फल के लिए अब अलग अलग साधन करो, इसके लिए वो करो, इसके लिए करो, इसके लिए करो, इसके लिए करो, सब कुछ होने लगता है। तो भक्ति ही सार है, श्रीमद् भागवत का सार है भक्ति, भागवत इसके लिए रचा गया। तो भगवान वेदव्यास देव इस भागवत का इस तरह प्रकाशन किए, और सूर्य जी आए कहते हैं कि ससंहिताम भागवती कृत्वा सह, ऐसे परम कृपालु भगवान वेदव्यास देव भागवतीम संहिताम कृत्वा, इस भागवती संहिता को बनाकर कृत्वा और अनुक्रम्य फिर रिविजन किए, रचने के बाद इसको फिर से देखे कई बार, खूब विचार किए, कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई, कहीं कोई अंश छूट तो नहीं गया है, इसकी व्याख्या की जरूरत है या क्या क्या करना, इसको अनुक्रमण कहते, अनुक्रम में रच करके और एक एक श्लोक एक एक अक्षर विचार करके और तब अपने पुत्र को पढ़ाए। आत्मजम अभ्यापयामास, अपने आत्मज को पढ़ाए, उनके देह से जो उत्पन्न हुआ था, मतलब सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। आत्मजम क्या नाम था? सुकम। सुकम आत्मजम अभ्यापयामास। और सुखदेव जी की विशेषता एक बता रहे हैं, निवृत्ति निरतम, जो भगवान के रस में इतना मग्न थे, संसार के पदार्थों में उनका कभी मन गया ही नहीं, उसको निवृत्ति निरत कहते, निरत नितराम रत। जैसे संसार के लोग निरंतर संसार की वस्तुओं में ही रत निरंतर, तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी निरंतर भगवान में रत थे, उसको निवृत्ति निरत कहता है। निवृत्ति का अर्थ होता है कि संसार से निवृत्त और भगवान में मन का फिक्स हो जाना, इसमें वे रक्त थे। क्या क्या शब्द है भागवत में, हम लोग प्रयास करते हैं कि दो चार मिनट के लिए भी मन निवृत्ति में आ जाता है, हटता है, लेकिन हटता नहीं है। और सुखदेव गोस्वामी का 24 घंटा मन निवृत्ति निरत, तो ऐसे निवृत्ति निरत आत्मजन को अध्यापया मास, पढ़ाया ममता से पढ़ाया। जिसमें सुखदेव गोस्वामी के दो क्वालिफिकेशन दिए गए, पहला क्वालिफिकेशन तो ये है कि वे भगवान के पुत्र हैं, वेदव्यास देव के पुत्र हैं,
और वेदव्यास देव कोई भौतिक शरीर वाले हैं ना, वो स्पिरिचुअल है। सुखदेव गोस्वामी का शरीर दिव्य, तो पढ़ाने में एक तो अपना पुत्र है अनुराग के साथ पढ़ाया उन्होंने, क्योंकि आत्मजन्म शब्द का प्रयोग किया जाए, अपना अपने देह से जन्म लिया। तो दूसरे हम लोग तो अपने पुत्रों को भेज देते हैं दूसरों को पढ़ाने के लिए, और इसे पढ़ाते नहीं हो तो केवल ट्यूशन फीस लेना चाहते हैं। वास्तव में आज के युग में ये तमाशा है। पहले विद्या एकदम फ्री थी, ज्ञान फ्री था, और चीज खरीदा जाता था दाम लगता था, लेकिन विद्या में नहीं। आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो द्वारकाधीश थे या द्वारकाधीश के पुत्र थे उस समय, और सुदामा जी एक बिल्कुल निर्धन ब्राह्मण के पुत्र थे, दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। ये नहीं पैसा है तो अब इस प्रकार के कोचिंग स्कूल में इसको भेजो, और नहीं पैसा है तो सब प्रवृत्ति में रहने पर मन इधर उधर विकसित कराता है।
और भगवान वेदव्यास देव जानते थे कि इस भागवत को ग्रहण करने की योग्यता उनके अन्य शिष्यों में नहीं है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं अपने मुख से बताया है नया अध्याय नवे स्कंध में, हित्वा पैला दिन शिष्यान, अपने पायल और जैमिनी आदि शिष्यों को हित्वा त्याग कर भगवान मुझे पढ़ाया, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, क्योंकि जैमिनी पायल पराशर आदि उनके शिष्य थे भगवान वेदव्यास देव के, लेकिन इन लोगों की रुचि बहुत बहुत सब्जेक्ट में थी, केवल भगवान में ही रुचि नहीं, भगवान में थी लेकिन और विषयों में बहुत ज्यादा, जैसे जैमिनी जी की कर्मकांड में बहुत रुचि थी, और बासन पायन जी की रुचि कथा कहानी कहने में, महाभारत आप पढ़ते हैं बहुत रुचि थी, पर सुखदेव गोस्वामी तो एक शब्द बोलते ही नहीं थे, उनकी रुचि क्या संसार में होगी इतने विरक्त। तो भगवान वेदव्यास देव जब पुत्र नहीं हुआ था तो उस समय भगवान कृष्ण की आराधना किए बद्रिकाश्रम में, और इन्होंने पुत्र मांगा भगवान से कि आप हमें पुत्र दीजिए जिसको मैं भागवत पढ़ाऊ, भागवत रच करके आवृत्ति करके रिविजन करके रखे थे, कोई शिष्य योग नहीं मिल रहा था, तभी तप किए और तप करके चाहते थे कि हमें पुत्र प्राप्त हो जिसको मैं भागवत पढ़ाऊ, तो उसी तपस्या के प्रभाव से सुखदेव गोस्वामी हुए। जब घर छोड़ करके चल दिए तब भगवान वेदव्यास देव का शोक बढ़ गया, जौना बेटा के कैली आस उ गोल केवड़ी ढोरा जिस बेटा की आशा किया वो इस तरह से दगा दिया। हमारे यहाँ हमारे गांव के पास और दो गांव है, नाम है केवड़ी और नेवरास, तो लोग ऐसे कहते हैं कि जौना बेटा के कैली आस उ गोल केवड़ी नेवरास वहां ये बहुत चलता है, मतलब जिस बेटा पर भरोसा किया वही छोड़ छाड़ पर चल दिया, जिसके लिए भागवत रच करके रखा गया वो तो उन लोगों से भी खराब निकल गया। वो लोग तो भला पढ़ते भी जैमिनी आदि, लेकिन तो पढ़ा भी नहीं, उस माँ के गर्भ से निकला और चल दिया, और पीछे से भगवान वेदव्यास देव हा पुत्र कह करके जाने लगे, बेटा लौटो लौटो। वही भगवान वेदव्यास देव साधारण प्राकृत व्यक्ति नहीं थे कि सांसारिक मोह से रो रहे थे, वो इसीलिए रो रहे थे कि अब कौन भागवत पढ़ेगा, मूल शोक का कारण यह था उनका। लेकिन सुखदेव जी बहुत तर्क वितर्क किए और नहीं लौटे, लौटे ही नहीं। तब वेदव्यास देव ने एक उपाय किया कि अपने कुछ शिष्यों को, बालक शिष्यों को, उन्होंने भागवत का छिटफुट श्लोक स्मरण करा दिया, और उनको कहा कि तुम लोग जाओ लकड़ी लाने के लिए, पत्र लाने के लिए, उस वन में बताया जिधर सुखदेव गोस्वामी रहते थे, तो उधर जाकर भागवत का श्लोक गाना, तुम लोग हमेशा गाते रहो। तो ये बच्चे जा जा करके गाया करते थे, तो सुखदेव गोस्वामी एक दिन दो श्लोक सुने, एक श्लोक में भगवान की कृपा का वर्णन था और दूसरे में भगवान के सौंदर्य का, वृंदावन में प्रवेश कर रहे बरहा पीडम नटवर बपु एक श्लोक, और पुतना को उन्होंने जो गति दी उद्धव जी के मुख से निकला हुआ अहो बकीयम स्तन काल कुछ, ये दो श्लोक सुखदेव जी ने सुना और सुनते ही उन बच्चों के पास आ गए और उन्होंने कहा फिर से बोलो फिर से बोलो फिर से बोलो। भगवान के सौंदर्य और करुणा ने उनके चित्त को आक्रांत कर लिया और लगे कहने कि हमको यह श्लोक याद करना है याद करना है। वो बार बार बोलवा रहे थे और तो बोलने लगे तो इन बच्चों ने कहा कि आप एक दो श्लोक के लिए इतना मरते हैं, हमारे गुरुजी 18,000 श्लोक रचे, आप उनसे क्यों नहीं सुनते हैं। तो पूछे तुम्हारे गुरु कौन है, वो बताया कि भगवान वेदव्यास देव हमारे गुरु। तो ये तो जानते ही थे वो तो हमारे पिता है। कहा है तो निकट बद्रिकाश्रम में है। तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं लौट आए, चलो 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 चलो, अपनी गरज से आकर के फिर प्रणाम किए और कहे पिताजी हम भागवत पढ़ना चाहते। इस तरह से खींच करके ला दिया भागवत का श्लोक। इसीलिए आगे श्लोक में आएगा हरे गुणा क्षिप्त मति, हरे गुण ही आक्षिप्त मतिर जस्य, भगवान के गुणों ने कृष्ण के गुणों ने उनके मति को छीन लिया, मतलब अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, ब्रह्म ज्योति के सुख से अपनी ओर खींच लिया और आ करके अपने पिता से अध्ययन किए भागवत के एक एक अक्षर का एक एक श्लोक का खूब अच्छी तरह से। 12वें श्लोक में लिखा गया 11वें में हरिर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अभ्यदान महदाख्यानम नित्यम विश्व जनप्रिय। तो निवृत्ति निरतम शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान वेदव्यास देव ने अपने विरक्त शिरोमणि पुत्र को पढ़ाया। तो सौनक जी इस पर शंका करते हैं, प्रश्न करते हैं, क्या शंका है कि प्रायः जो विरक्त मुनि होते हैं सन्यासी होते हैं वे इस तरह से कोई ग्रंथ पढ़ें इतना आग्रह करके नहीं होता है। और सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति जो अपने पिता की उपेक्षा करके घर से चला गया जन्म लेते हैं इतना विरक्त कि संसार का उसे कोई संबंध सौंदर्य कोई वस्तु खींच नहीं पाई, वह व्यक्ति फिर आ करके ग्रंथ पढ़ेगा ऐसा तो नहीं सुना गया है। तो सौनक जी इसी पर प्रश्न करते हैं, सवै निवृत्ति निरत सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्यवा बृहति मे ताम आत्मा राम समभ्यसत। सुखदेव गोस्वामी निवृत्ति निरत थे, सर्वत्र उपेक्षक थे, मुनि थे और आत्मा राम थे, तो फिर बृहति एताम इस विशाल ग्रंथ का उन्होंने अध्ययन कैसे किया, ये आश्चर्य की बात है। इसका अर्थ है चाहे आत्मा राम हो चाहे सर्वत्र उपेक्षक हो परंतु भागवत का उपेक्षक नहीं हो सकता है। सर्वत्र उपेक्षा करने वाला भी भागवत की अपेक्षा करके घर लौट आया तो और सबकी उपेक्षा की जा सकती है लेकिन ये भागवत सप्ताह की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सब कुछ की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति आकर के भागवत पढ़ा तो निवृत्ति निरत सबका मूल कारण क्या है, मुनि। सुखदेव गोस्वामी मुनि थे, मुनि शब्द यहाँ स्पेशल अर्थ रखता है, जो मननशील थे और प्राकृत पदार्थों को छोड़कर भगवान के लीलाओं का मनन करते थे। वे वास्तव में सुखदेव गोस्वामी का मन निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में आसक्त नहीं था, भगवान की लीलाओं में ही उनका मन आसक्त था, इसलिए वे घर छोड़कर चल दिए थे। तो ब्रह्म ज्योति में आसक्त रहने वाला इतने त्याग कर ही नहीं पाएगा। या श्रीमद् भागवत में जहां तहां लिखा गया है भगवान की लीलाओं के मनन चिंतन में घर छोड़कर निकल गए, नहीं तो आप भगवान वेदव्यास देव उनको व्याकरण पढ़ाना चालू करेंगे ये करेंगे वो करेंगे झंझट को कौन पहनेंगे। तो चल दिए इसको मुनि कहते, मुनि का अर्थ है मननशील। किसका मनन? मनन का अर्थ है कि मन को जिसमें लगाया जाए, बार बार जिसका चिंतन किया जाए, उसको मनन कहते हैं। मनन, मन शब्द से मनन शब्द बनता, मन से बारंबार चिंतन करना। वो कर रहे थे भगवान का चिंतन, इसलिए निवृत्ति नहीं रहता। जब भगवान का रस मिल रहा था तो संसार के रस से निवृत्त थे, इधर एक सेकंड भी उनका मन खींचा नहीं जा रहा था। संसार के किसी भोग में ऐसी शक्ति नहीं, ऐसा आकर्षण नहीं कि उनके चित्त को खींच सके, और इसी कारण से सर्वत्र उपेक्षक, सर्वत्र उपेक्षक। और साधारण जीवों की दशा है कि सर्वत्र अपेक्षक, सर्वत्र अपेक्षक है, अपेक्षा करता है ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। सुखदेव गोस्वामी तो सब कुछ की उपेक्षा कर देते, कुछ भी नहीं चाहिए। सर्वत्र उपेक्षक का अर्थ है कोई इच्छा नहीं थी उनको ब्रह्मलोक के भोग की या इस लोक के, कुछ भी उपेक्षा नहीं, क्योंकि बहुत भारी रस में थे। और सबसे बड़ा कारण ये था आत्मा राम, और इसीलिए वे आत्मा में भगवान श्री कृष्ण में आ राम रम रहे थे, उनका सुख वही था, दूसरा नहीं। उसको आत्मा राम कहते, आत्मनि आ सम्यक रमते इति आत्मा राम, जो आत्मा में भगवान श्री कृष्ण में रमे उसको आत्मा राम कहा। या अपने स्वरूप में रमे तो स्वरूप में जीव का कृष्ण का नित्य दास है, इसलिए भगवान की नित्य सेवा करना इसमें जो रमता है उसको आत्मा राम कहते हैं। तो आत्मा राम थे, रमे हुए थे, सर्वत्र उपेक्षक थे, रस में डूबे हुए थे। तो ऐसा महान व्यक्ति जो कृतार्थ हो चुका है, जिसको भगवत रस मिल चुका है, वो क्यों फिर ग्रंथ को पढ़ेगा? इससे भागवत की महिमा व्यक्त हो रही है। भागवत की बहुत बड़ी महिमा व्यक्त हो रही है। जब आत्मा राम मुनि गण भी भागवत पढ़ने के लिए लौटते हैं सुनने के लिए, तो रात दिन ऑफिस और घर में रहने वाला व्यक्ति क्यों नहीं सुनेगा इसको? वो कौन से रस में है ना? उसको तो कोई रस मिल नहीं रहा है संसार में, तो दुख से जल रहा है, तो वो क्यों नहीं सुनेगा? जबकि ऐसे परम सुखी कृतार्थ जीव सुखदेव गोस्वामी, ऐसे लोग इस भागवत को पढ़ते थे। तो जीवन के किसी भी स्तर पर भागवत पढ़ने लायक है, सुनने लायक, गाने लायक। चैतन्य महाप्रभु ने इसको अपने जीवन के आचरण से बताया। उस दशा में भी जब कृष्ण के विरह में है, भागवत गाना सुनना यह जीवन है। भागवत केवल कोई साधन मात्र नहीं है। भाई हम सिद्धि को पा गए तो साधन को छोड़ दें, रिक्शा करके जा रहे हैं, हायर करके हम पहुंच गए जहां जाना है, तो देखते भी नहीं है रिक्शा को, छोड़ो। इससे साधन का त्याग कर दिया, साधन हमको पहुंचा दिया, तो अब साधन से कोई प्रेम नहीं रहा। किसी ट्रेन पर आ रहे हैं आप, आ रहे हैं, उतर गए, उतर कर अपने घर चले आए, तो ट्रेन के विषय में चिंता भी नहीं करते हैं कि बाकी लोग कितना गर्मी में होंगे, क्या कर रहे हैं, चिंता नहीं करते हैं साधन की। आगे एक्सीडेंट भी हो जाए तो बहुत मन पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो श्रीमद् भागवत का इस तरह का केवल साधन नहीं है, साधन है लेकिन स्वयं अपने आप में यही सिद्धि है, यही साध्य। इसमें भगवान व्यास देव ने कहा है कि त्रिगत भागवतम रसम आलयम, आलयम का अर्थ है कि मुक्ति पर्यंत इसको पियो। जब तक मुक्ति नहीं हो जाती है तब तक पियो नहीं, जब मुक्ति तक पियो। हा माने पर्यंत, मुक्ति तक पियो, भगवान के धाम में जाने के बाद भी पियो। वहां तो खैर उपदेश की आवश्यकता ही नहीं है, उपदेश भूमि इस पृथ्वी पर आवश्यकता है। जब तक इस पृथ्वी पर हो पियो पियो, तिब्बत भागवतम रसम। इस तरह से भागवत महान ग्रंथ पीने के लिए। तो शौनक जी की यह शंका है, निवृत्ति निरत, सर्वत्रोपेक्षक,
मुनि और आत्माराम कैसे इस ग्रंथ को पढ़ा, वो भी बृहति विशाल ग्रंथ है। बृहति बृहति संहिता में शेष कश्य वा, किस कारण से क्यों पढ़े, वो भी समाध्यास है, इसको पढ़ने में बहुत समय लगा होगा, अन्वय करना, ये करना, वो करना, कई तरह से पढ़े होंगे, कैसे इसमें उनका मन लगा पढ़ने। सूत उवाच, सूत जी उत्तर देते हैं कि इसमें कारण क्या है, कारण भगवान का गुण है, इथम भूत गुण हरि कि आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहय तुकिं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। इत्थं भूत गुणो हरि, यही मूल वाक्य है। भगवान का ऐसा गुण ही है, ये उत्तर हुआ। भगवान इतने विलक्षण वश में वस्तु है, इतने विलक्षण है कि चाहे कोई निवृत्ति निरत हो, आत्मा राम हो, मुनि हो, उसको अपने गुण से खींच ही लेते हैं और भक्ति करता है, वो भक्ति करेगा। इस श्लोक की बहुत विशद व्याख्या की गई है, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसकी 61 व्याख्या की है और सब व्याख्या एक दूसरे से मिलते हुए। आत्मा रामाश्च मुने, आत्मा राम का अर्थ आत्मा में रमने वाले, आत्मा के 7 अर्थ होते हैं, उन 7 में जो रमता है वो आत्मा राम है। आत्मा के 7 अर्थ इस तरह से है, देह, मन, बुद्धि, धैर्य, भगवान और कौन कौन है, प्रयत्न, धृति, धृति को तो मैं धैर्य कह दिया, प्रयत्न, इच्छा, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, चेतन महाप्रभु किए हैं अर्थ, आत्मा के 7 अर्थ, जय, धृति, देह, मन, इंद्रिय, भगवान और जीव, आत्मा, ये 7 अर्थ है। इसमें जो रमे वो आत्मा राम है, तो जो अपने देह में रम रहा है वो भी आत्मा राम है। या अपने दुकान खोल करके उसमें अपने जप्न में काम धाम में लगा हुआ है वो भी आत्मा राम है। चैतन्य महाप्रभु अर्थ करते हैं, कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकता है यदि उसे कृष्ण के गुणों को सुनने को मिल जाए, तो जो देह में रम रहा है वो भी आत्मा राम है, अपने मन में रम रहा है वो भी आत्मा राम है, जहां मन करता है वहां घूम रहा है वो भी आत्मा राम है। तो पहले डिक्शनरी जैसा अलग अलग शब्दों का भी अर्थ करते हैं, आत्मा का ये 7 अर्थ है, राम आराम का अर्थ सम्यक रमते ही थी, तो अलग अलग आत्मा के साथ रमना बैठा करके अर्थ किया जाए, आत्मा राम अच्छा मुनय, अच्छा च अव्यय है, इसके भी कई अर्थ होते हैं, च के भी कई अर्थ होते हैं, चैतन्य महाप्रभु गिनाए हैं, च का अर्थ है जोड़ना, वो जोड़ने वाले, इसको जोग कहते हैं, एक शब्द से दूसरा जुड़ता है, इसको च कहते हैं, यह और अर्थ में च का शब्द प्रयोग, और च का अर्थ प्रयोग होता है भी, आलस अंग्रेजी में कहते हैं, इसके साथ ही साथ अभी करते हैं, और च का अर्थ है अवश्य, और इस तरह से कई अर्थ किए हैं च का, ये अव्य आत्मा राम से मुनय, और मुनि का अर्थ भी कई किए हैं, मुनि का ऐसे जनरल अर्थ तो ऋषि मुनि होता ही है, मुनि शब्द का यही अर्थ होता है, लेकिन मुनि शब्द संस्कृत शब्दकोश से किया गया है, मुनि शब्द के 11 अर्थ होते हैं, मुनि शब्द का अर्थ होता है जो बोल नहीं सकता है, मौन, मनुष्यों के अलावा जितने प्राणी हैं बहुत कम बोलते हैं, इसलिए सब मुनि, पक्षी को भी मुनि कहा गया,
और मननशील तो इसका अर्थ होता है मौनी अर्थ होता है, तपस्वी अर्थ होता है, ऋषि अर्थ होता है, यहाँ तक कि मुनि का अर्थ कर्मी भी होता है, अपने काम में धंधे में रम रहा है, मुनि का भी अर्थ होता है। और मुनि का खास अर्थ एक होता है कि जो बोल नहीं सकते हैं, वृक्ष बोलते नहीं है उनको मुनि कहते हैं। वृंदावन के वृक्ष भी भगवान की भक्ति करते हैं, गाय बैल ये बेचारे बोलते नहीं है ये भी भक्ति कर सकते हैं, ऐसा भगवान का गुण है। कृष्ण के संपर्क में आ जाए बस भक्ति करने लगेगा। आत्मा रमश्च मुनि निर्ग्रंथा, और निर्ग्रंथा का अर्थ है जो ग्रंथ से ऊपर उठ गए हैं, विधि निषेध से परे हो गए हैं, मूल अर्थ तो ये होगा। इसके साथ ही साथ ग्रंथी शब्द का अर्थ होता है गांठ, जिसके पास बहुत धन हो उसको सग्रंथ कहते थे। पहले ऐसा नोट नहीं होता था तो लोग कहीं चलते थे तो गांठ बांध कर चलते थे, पैसा लेकर देते, और जिसके पास पैसा नहीं होता था उसको निर्ग्रंथ कहते थे, गरीब। निर्धन गरीब भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और निर्ग्रंथ का एक अर्थ होता है जिसके पास नितरान ग्रंथी हो, व्याध को ग्रंथी सग्रंथ कहते हैं, निर्ग्रंथ कहते हैं, व्याध जिसे मृगारी भक्ति किया। और निर्ग्रंथ का अर्थ है कि जो ग्रंथ कभी पढ़ नहीं सकते हैं, सुने भी नहीं कि भागवत क्या चीज है बिना ग्रंथ के। भागवत पाठ करने वाले भी भागवत सुन रहे हैं, और जो आज तक भागवत नहीं पढ़े होंगे वो भी सुन रहे हैं, वो भी भगवान के भक्त है। निर्ग्रंथ का एक अर्थ है ग्रंथ नहीं पढ़े। तो पशु पक्षी आदि तो कभी ग्रंथ पढ़े क्या, जान सुनते नाम भी नहीं जानते होंगे भागवत कोई ग्रंथ, ये भी भक्ति कर सकते किए है। दशम स्कंध में सब वर्णन है, भगवान उनकी भक्ति का स्वयं अनुमोदन किए, प्रशंसा किए। तो निर्गम था ये लोग भी, अति शब्द अव्यय है, इसके भी कई अर्थ है। ये लोग भी अहैतुकीं भक्तिं कुर्वन्ति, कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणोहरि। अब इत्थं भूत शब्द बता रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, भगवान का ऐसा आकर्षण है कि आत्मा राम मुनि भी उनमें अहैतु की भक्ति करते हैं, पशु भी करते हैं, व्याध भी करते हैं, निर्धन करते हैं, धनी करते हैं। निर्ग्रंथ का अर्थ है नितराम ग्रंथ, जिसके पास बहुत ग्रंथ है, बहुत गांठ है, बहुत पैसा है, वो भी भक्ति करता है। और निर्ग्रंथ का अर्थ एकदम कंगाल है, वो भी भक्ति कर सकता है। वास्तव में कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके हैं, और किसी भी अवस्था में सुलभ है, कहीं भी। ऐसा नहीं कि गरीब हो गया तो भगवान उसके नहीं है, या ज्यादा धनी हो गया तब भगवान उससे रंज हो जाएंगे, भगवान का भजन नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। जैसे एक पिता है, पिता के का कोई पुत्र धनी हो जाए गरीब हो जाए फिर भी उसका समान संबंध बना रहता है, इसी तरह भगवान हरि श्री कृष्ण जो भक्तों के दुख को हर लेते हैं और अपने प्रेम अपना प्रेम देकर के मन और नेत्र हरते हैं, उनमें ऐसा विलक्षण गुण है, जीवों के साथ उनका ऐसा संबंध है कि कोई भी व्यक्ति उनके संपर्क में आएगा वो भजन करेगा। वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि देह में महाआसक्त व्यक्ति भगवान का परम भक्त हुआ, महानिर्धन भगवान का भक्त हुआ, पशु भक्त हो गया, पक्षी भक्त हो गया, जटायु एक पक्षी थे, जो सीता जी का अपहरण हो रहा था तो रावण से युद्ध किए, और युद्ध में उन्हें परास्त कर दिया गया, उनके पंख को रावण ने काट दिया। एक पक्षी तक भगवान की भक्ति कर सकते, बानर तो महाभक्त है ही, हनुमान जी बानर, ये बानर भी भगवान की भक्ति कर सकता है, तो नर क्यों नहीं कर सकता। नर तो जब होगा तब बानर से श्रेष्ठ ही है ना, जब वाह नर कर सकता है तो याद नर क्यों नहीं कर सकता। ये सोचने की बात है वास्तव।
वानर नरो वानरो वा, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है। जब नर कर नर वा अनर है, नर हो चाहे अनर हो, वा नर का अर्थ भागवत में किया गया है। वा माने अथवा, नर शब्द पंचम स्कंद में हनुमान जी खुद बोल रहे हैं, नरो वा नरो, नर वा अनर, कोई भी हो भगवान की भक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं कि केवल नर शरीर से करेगा। क्या शर्त है कि भगवान के गुण से उसका संपर्क हो जाए, बस वो भक्ति करेगा। और अहेतु की भक्ति करेगा, हेतु के कई अर्थ चैतन्य महाप्रभु बताए, और अहेतु की मतलब भगवान से प्रेम करेगा तो बस प्रेम करेगा, उनसे कुछ चाह करके प्रेम नहीं, किसी वस्तु की कामना करके नहीं। जब वृंदावन लीला में वर्णन है कि भगवान कृष्ण के आगे मोर नाचते थे, तो मोर भक्ति करते थे और कृष्ण को देना चाहते थे, कृष्ण से लेना नहीं चाहते थे। कृष्ण के आगे नाचते नाचते अपना मोर पंख गिरा देते थे और कृष्ण उसको लेकर अपने सिर पर धारण करते थे, वो देते थे, कृष्ण से लेते नहीं थे। या कृष्ण को नाच दिखा दिखा करके कृष्ण को सुखी करते थे। कुर्वंती यह शब्द करते, कृष्ण में भक्ति करते, कृष्ण के प्रति भक्ति करते हैं, अपने आप सिद्ध कर रहा है कि कृष्ण के सुख के लिए करते हैं। परस्मै पद का प्रयोग किया गया है, कुर्वंती, कुर्वंती शब्द अपने आप यह सिद्ध कर दिया है कि वह व्यक्ति जिसने भक्ति कर रहा है उसका काम बनाने के लिए कर रहा है, कृष्ण के सुख के लिए भक्ति करते हैं, अहेतु की भक्ति करते हैं। और कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो तो आत्मा राम थे, सुखदेव गोस्वामी परमहंस चूड़ामणि थे, वे भक्ति किए तो क्या आश्चर्य की बात है। पशु कर सकते हैं, पक्षी कर सकते हैं, ऐसा गुण है भगवान कृष्ण का। किसके लीला ने उनको खींचा, हरि की लीला, हरेर गुणाक्षिप्त मति। वास्तव में सबसे बड़ा सौभाग्य जीव का यही माना गया है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में उसे सुनने को मिले, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है जीव का कि कृष्ण के विषय में सुनने को नहीं मिलता, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य। कहा जाता है, शास्त्र कहता है कि सबसे बड़ा सौभाग्य है साधु संग, लेकिन साधु संग का मतलब ही है कृष्ण का श्रवण, क्योंकि साधु की परिभाषा बारंबार भागवत में दी गई है। तो वहां कहा गया है जत्रो तमसलो गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात, इथम भूत गुणो हरि, भगवान में ऐसे गुण ही हैं किसी को भी वो खींच लेंगे। तो भगवान के गुणों ने ऐसे उपेक्षक को अपेक्षक बना दिया। और रात दिन विरक्त रहने वाले घूमने वाले के आंखों में अजस्र आंसू बहाना चल बहवा दिया कृष्ण प्रेम। मौनी को 7 दिन और 7 रात निरंतर बोलने के लिए बाध्य कर दिया। यह है गुण भगवान, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्राय मनो राजन निवृत्ता विधि से होता निर्गुण अवस्था रमनते स्म गुणानुकथने हरे। सुखदेव गोस्वामी अपने प्रवचन के प्रारंभ में ही कहते हैं महाराज परीक्षित से कि हे राजन, जो भी विधि निषेध से अतीत है, मुनिजन है, निर्गुण प्लेटफॉर्म पर हो जाते हैं, प्राय उनका एक ही काम होता है। देखा गया है प्राय रमनते गुणानुकथने हरे, हरि के गुणानुकथन में रमते रहते हैं। रमना शब्द यह बताता है कि बिना किसी रूटीन के, बिना किसी बाहरी दबाव के, अपने आप जहां मन लगा रहे और हटाने से भी न हटे, उसको रमण कहते हैं। जैसे बच्चे खेलने में रमते रहते हैं, तो इनको रमना कहते हैं।
बच्चे कोई शिक्षा देने पर खेलने नहीं जाते हैं, तुमको खेलना चाहिए, बल्कि रोका जाता है कि अब खेलो मत, चलो पढ़ो, वो जल्दी जाना नहीं चाहते हैं, वो खेलना चाहते हैं, इसको रमण करते, रमु क्रीड़ा है। तो इस तरह की परम आसक्ति को रमण कहते हैं। तो आसक्ति पूर्वक मुनिजन प्रायः भगवान के गुणों गुणानुकथन में रमे रहते हैं, बोलते रहते हैं। अगर कोई नहीं है तो गायंती, गाते रहते हैं, नहीं कोई सुनने वाला है तो गाते हैं, बोलते हैं, और कोई बोलने वाला मिल गया तो सुनते हैं। श्रृणवंती श्रृणवंती गायंती गृणंत भिक्षण स स्मरंती नंदंती तवे ही तंजना तयेव पश्यंत चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुज। और दूसरे लोग श्रवण कीर्तन में है तो अभिनंदन 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 करते हैं, अनुमोदन करते हैं। तो इस तरह से भगवान के बहुत से गुण है। यह इत्थम भूत गुण एक ऐसा शब्द है कि क्या कहा जाए। जैसे मान लीजिए किसी धनी व्यक्ति का वर्णन किया जाए और कहा जाए कि संसार में सब सभी की इच्छा पूरी कर सकता है, उसके पास बहुत धन है, ये धन है, वो धन है, वो धन है, सारे ब्रह्मांड को खिला सकता है, पिला सकता है, उसका वर्णन इतना ही पर्याप्त है कि अरे इतना धन उसके पास है ही कि वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा हरि का गुण है कृष्ण का कि वो किसी को भी खींच लेंगे। गोपी जन तो बांसुरी को कहती हैं कि सखी जो वेणु है बांसुरी है इसमें कोई रस नहीं है, तो सात सात छेद है इसके पेट में, एक छिद्र वाला कितना बुरा माना जाता है, छिद्र माने दोष, इसमें सात सात छेद है, सूखा बांस है, लेकिन आज इसका कमाल देखो, क्यों ऐसी इसमें विशेषता आ गई।